नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा, जॉन मेनार्ड कीन्स की द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, पहली बार 1936 में प्रकाशित। आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र की निर्णायक कृति है। यह कोई सरल नीति पुस्तिका नहीं, बल्कि महामंदी के अनुभव से निकला सैद्धांतिक आर्थिक ग्रंथ है। कीन्स ने उस प्रचलित धारणा को चुनौती दी कि मजदूरी और कीमतों के लचीले समायोजन से बाजार अपने आप पूर्ण रोजगार पर लौट आता है। उनका केंद्रीय प्रश्न था कि काम करने को तैयार लोग बेरोजगार क्यों रह सकते हैं, जबकि समाज के पास उत्पादन की क्षमता मौजूद हो। पुस्तक का उत्तर कुल व्यय, निवेश की अनिश्चितता, बचत, ब्याज और धन रखने की इच्छा के परस्पर संबंधों में मिलता है। कीन्स का उद्देश्य पूंजीवादी व्यवस्था को अस्वीकार करना नहीं था, बल्कि उसकी अस्थिरताओं को समझना और सार्वजनिक नीति के लिए बेहतर आधार देना था। इसकी भाषा और तर्क कई जगह कठिन है, फिर भी इसने रोजगार, मंदी, बजट घाटे और सरकारी हस्तक्षेप पर होने वाली बहस की बुनियादी शब्दावली बदल दी। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले, प्रभावी मांग बताती है कि उत्पादन और रोजगार किससे तय होते हैं। कीन्स के तर्क का केंद्र प्रभावी मांग का सिद्धांत है। किसी अर्थव्यवस्था में कंपनियां उतना ही उत्पादन और उतने ही श्रमिक नियुक्त करती हैं, जितनी वस्तुएं और सेवाएं बिकने की उम्मीद हो। इसलिए रोजगार केवल उपलब्ध श्रम, उत्पादन क्षमता या मजदूरी की दर से निर्धारित नहीं होता। यदि परिवार खर्च घटाएं और उद्यमी भविष्य की बिक्री को लेकर आशंकित हों, तो कुल मांग कम हो सकती है। ऐसी स्थिति में कंपनियां उत्पादन घटाती हैं, नई नियुक्तियां रोकती हैं और बेरोजगारी बढ़ती है। कीन्स के लिए यह बेरोजगारी स्वैच्छिक नहीं होती, क्योंकि बहुत से लोग प्रचलित मजदूरी पर काम करना चाहते हैं, फिर भी उनके लिए काम उपलब्ध नहीं होता। यह दृष्टि उस शास्त्रीय विचार से अलग थी, जिसमें बचत को स्वतः निवेश में बदल जाने वाला माना जाता था। कीन्स कहते हैं कि परिवारों की बचत बढ़ने का अर्थ यह नहीं कि उद्यमी उसी अनुपात में निवेश करेंगे। निवेश लाभ की अपेक्षा पर निर्भर है। अतः अर्थव्यवस्था कम उत्पादन और कम रोजगार वाले संतुलन पर भी टिक सकती है। यही निष्कर्ष नीति की समस्या को मजदूरी घटाने से हटाकर मांग को सहारा देने की ओर ले जाता है। दूसरा, उपभोग प्रवृत्ति और गुणक से खर्च के व्यापक असर को समझना। कीन्स आय और उपभोग के संबंध को उपभोग फलन के माध्यम से समझाते हैं। सामान्यतः आय बढ़ने पर परिवार उपभोग बढ़ाते हैं, लेकिन पूरी अतिरिक्त आय खर्च नहीं करते। अतिरिक्त आय का जो भाग खर्च किया जाता है, उसे सीमांत उपभोग प्रवृत्ति कहा जा सकता है। इसका महत्व इसलिए है कि किसी व्यक्ति का खर्च दूसरे व्यक्ति की आय बनता है। जब निवेश या सरकारी व्यय बढ़ता है, तो उसे पाने वालों की आय बढ़ती है, वे उसका एक हिस्सा खर्च करते हैं और यह प्रक्रिया आगे कई दौर तक चलती है। इसी संचयी प्रक्रिया को गुणक का विचार स्पष्ट करता है। इसका अर्थ यह नहीं कि हर सार्वजनिक खर्च बिना सीमा के उत्पादन बढ़ाता है। प्रभाव इस बात पर निर्भर करता है कि निष्क्रिय संसाधन और बेरोजगार श्रम कितने हैं, आय का कितना भाग खर्च होता है, तथा अर्थव्यवस्था आयात या कीमतों की वृद्धि के माध्यम से कितना रिसाव अनुभव करती है। फिर भी मंदी में इसका निहितार्थ महत्वपूर्ण है। निजी क्षेत्र जब खर्च और निवेश करने से हिचक रहा हो, तब सार्वजनिक व्यय सीधे मांग बढ़ा सकता है। कीन्स इस तरह बचत को निजी सद्गुण मानने और हर परिस्थिति में समष्टि के लिए लाभकारी मानने के बीच का अंतर दिखाते हैं। तीसरा, निवेश में अपेक्षाएं, सीमांत दक्षता और एनिमल स्पिरिट्स की भूमिका। पुस्तक निवेश को केवल ब्याज दर की यांत्रिक प्रतिक्रिया नहीं मानती। कीन्स के अनुसार उद्यमी किसी मशीन, कारखाने या परियोजना पर खर्च करते समय उससे मिलने वाली भावी आय का अनुमान लगाते हैं। पूंजी परिसंपत्ति से अपेक्षित प्रतिफल और उसकी वर्तमान लागत के संबंध को वे पूंजी की सीमांत दक्षता से जोड़ते हैं। यदि भविष्य के लाभ का अनुमान कमजोर हो, तो कम ब्याज दर भी निवेश को पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ा सकती। समस्या यह है कि दूर के भविष्य के बारे में विश्वसनीय जानकारी सीमित होती है। इसलिए निवेश निर्णय पर प्रचलित राय, बाजार का भरोसा और बदलती मनोवैज्ञानिक अपेक्षाएं गहरा प्रभाव डालती हैं। कीन्स ने इस अनिश्चित, सहज प्रेरित पक्ष को एनिमल स्पिरिट्स कहा। इसका आशय यह नहीं कि निवेश पूरी तरह अतार्किक है, बल्कि यह कि गणना के पीछे ऐसी अपेक्षाएं होती हैं जिन्हें निश्चित तथ्यों में नहीं बदला जा सकता। तेजी के समय आशावाद निवेश को बढ़ा सकता है और संकट में निराशा उसे अचानक गिरा सकती है। इस विश्लेषण से मंदी की व्याख्या अधिक वास्तविक बनती है। यदि निजी निवेश का आधार ही डगमगा गया हो, तो केवल बाजार के भरोसे शीघ्र पुनरुद्धार की अपेक्षा करना पर्याप्त नहीं है। चौथा, तरलता, वरीयता और ब्याज दर की सीमाएं मौद्रिक नीति को क्यों बांधती हैं? कीन्स ब्याज दर को बचत और निवेश के साधारण संतुलन से नहीं समझते। उनके अनुसार ब्याज धन को तरल रूप में रखने की इच्छा छोड़ने का प्रतिफल है। लोग धन का एक भाग लेन देन के लिए, एक भाग अनिश्चित परिस्थितियों से बचाव के लिए और एक भाग भविष्य की ब्याज दरों तथा परिसंपत्ति कीमतों के अनुमान के आधार पर रखते हैं। इसे तरलता वरीयता कहा जाता है। धन की आपूर्ति और धन रखने की मांग मिलकर ब्याज दर को प्रभावित करती हैं। इस विचार का व्यावहारिक महत्व तब सामने आता है जब लोग भविष्य को लेकर बहुत चिंतित हों। वे कम प्रतिफल पर भी नकद या अत्यंत तरल परिसंपत्तियां रखना पसंद कर सकते हैं। तब केंद्रीय बैंक द्वारा धन की आपूर्ति बढ़ाने का असर निवेश तक सीमित रूप से पहुंचता है। बाद की भाषा में ऐसी परिस्थिति को तरलता जाल कहा गया। कीन्स का निष्कर्ष यह नहीं कि मौद्रिक नीति निरर्थक है, बल्कि यह है कि उसकी क्षमता परिस्थितिनिष्ठ है और निवेश की अपेक्षाओं से बंधी है। गहरी मंदी में ब्याज दर घटाना पर्याप्त न हो तो सार्वजनिक निवेश और राजकोषीय व्यय की भूमिका बढ़ जाती है। पुस्तक इस प्रकार मुद्रा, वित्तीय व्यवहार और वास्तविक उत्पादन को एक ही समष्टिगत ढांचे में रखती है। अंत में प्रतिचक्रीय राजकोषीय नीति बाजार की विफल मांग का अस्थायी प्रतिकार है। कीन्स के विश्लेषण से सक्रिय राजकोषीय नीति का तर्क निकलता है। जब निजी उपभोग और निवेश कमजोर हों, सरकार सार्वजनिक कार्यों, सेवाओं या हस्तांतरणों के जरिए अतिरिक्त मांग पैदा कर सकती है। इससे सीधे रोजगार बनता है और गुणक के माध्यम से अन्य क्षेत्रों की आय तथा बिक्री को सहारा मिल सकता है। मंदी के दौरान बजट संतुलन को हर कीमत पर बनाए रखने के लिए खर्च घटाना उल्टा प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि वह पहले से कमजोर मांग को और कम कर देता है। इसलिए अस्थायी घाटा अपने आप में नीति की विफलता नहीं है, उसका मूल्यांकन अर्थव्यवस्था की निष्क्रिय क्षमता, रोजगार की स्थिति और खर्च की गुणवत्ता के संदर्भ में होना चाहिए। साथ ही कीन्स का ढांचा हर समय असीमित खर्च की अनुमति नहीं देता। जब संसाधन पूरी तरह उपयोग में हो, अतिरिक्त मांग उत्पादन के बजाय कीमतों पर अधिक दबाव डाल सकती है। इसीलिए इसका मूल भाव प्रतिचक्रीय है, अर्थात मंदी में समर्थन और उछाल के समय संयम। पुस्तक के बाद की लोकप्रिय व्याख्याओं ने इसे केवल सरकारी खर्च के समर्थन तक सीमित कर दिया, पर मूल तर्क अधिक सूक्ष्म है। लक्ष्य निजी निर्णयों को स्थायी रूप से बदलना नहीं, बल्कि मांग की गंभीर कमी से पैदा होने वाली व्यापक अनैच्छिक बेरोजगारी को रोकना है। निष्कर्ष में द जनरल थ्योरी उन पाठकों के लिए सबसे उपयोगी है जो मंदी, बेरोजगारी, ब्याज दर, सरकारी बजट और केंद्रीय बैंक की नीति के बीच वास्तविक संबंध समझना चाहते हैं। अर्थशास्त्र के विद्यार्थी, नीति निर्माता, सार्वजनिक वित्त के अध्येता और आर्थिक बहसों को सतही नारों से आगे पढ़ने वाले पाठक इससे विशेष लाभ ले सकते हैं। आरंभिक पाठक के लिए यह कठिन हो सकती है, क्योंकि कीन्स अपने समय की शास्त्रीय शब्दावली के साथ विस्तृत सैद्धांतिक बहस करते हैं। इसलिए किसी मार्गदर्शक, व्याख्यात्मक संस्करण या आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र के परिचय के साथ इसे पढ़ना अधिक फलदायी रहेगा। इसका बौद्धिक लाभ किसी एक तैयार नीति नुस्खे में नहीं, बल्कि प्रश्न पूछने की नई पद्धति में है। यह सिखाती है कि व्यक्तिगत बचत और समष्टिगत परिणाम अलग हो सकते हैं। कम ब्याज दर निवेश की गारंटी नहीं देती तथा बाजार संतुलन पूर्ण रोजगार का पर्याय नहीं है। इसी कारण यह समान विषय की सामान्य अर्थनीति पुस्तकों से अलग खड़ी होती है। अनेक पुस्तकें सरकारी खर्च के पक्ष या विपक्ष में तर्क देती हैं, जबकि कीन्स पहले यह विश्लेषित करते हैं कि उत्पादन और रोजगार को चलाने वाली मांग क्यों अस्थिर हो सकती है। बाद के अर्थशास्त्रियों ने उनके निष्कर्षों पर विवाद किया है और उनकी अवधारणाओं को बदला भी है। फिर भी अनिश्चितता, निवेश विश्वास और मांग की कमी पर उनका ढांचा आर्थिक संकटों को समझने का अपरिहार्य संदर्भ बना हुआ है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जॉन मेनार्ड केन्स, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।